आप बहुत छोटे से नुकसान से निकल गए। अब आपने अपने स्टॉक्स को चुनने का तरीके में क्या डिफरेंस लेके आए आप?
फिर मैं डिफरेंस ये लेके आया है कि कम से कम जिसमें मैं ट्रेडिंग करूँगा वो फाइनेंशियल साउंड हो उसके। अब मैं उसके रिसर्च करने लग गया कि कम से कम वो कंपनी प्रॉफिटेबल हो, इतना मार्केट कैप हो, उसके कम से कम डेट ना हो, जो यस बैंक में हुआ। डेट नहीं होगा कम से कम कंपनी सर्वाइव तो करेगी, अगर डेट हो जाएगा तो यही नहीं पता कब बंद हो जाती है कंपनी। तो ये देख के फिर मैंने कम से कम ये किया कि ट्रेडिंग अब जो भी करूँगा फाइनेंशियल पोजीशन उसकी स्ट्रांग होनी चाहिए।
करेक्ट अविल। हाँ बताइए।
फिर उसके बाद ये हुआ, लेकिन अब उसके लिए मैंने स्टॉक सिलेक्ट तो कर लिए, रिलायंस, इन्फोसिस, HDFC बैंक, जो सारे ब्लू चिप कंपनी, लेकिन अब उसमें कैपिटल डालूँ तो मेरी कैपिटल छोटी है
करेक्ट,
और उस पर
बड़े क्यों
रिटर्न
कर रहे
कुछ नहीं
हैं?
मिलता, क्योंकि अब इसका भी रास्ता दोनों तरफ से बंद हो रहा है। फिर उसके बाद थोड़ा सा मिड कैप में जो साउंड कंपनीज हैं उसमें रिसर्च, फंडामेंटल एनालिसिस कि कौन सी कंपनी अंडर वैल्यूड है, उनके पीयर से कंपैरिजन किया, करना स्टार्ट किया। तो जो अंडर वैल्यूड लगी उसको रखा कि कोई बात नहीं, 4-6 महीने पड़ा रहेगा, उसकी वैल्यूएशन कभी तो री रेटिंग होगी कंपनी की।
अंडर वैल्यूड को थोड़ा डिफाइन करें और आपने किस तरह से उसको फिगर आउट किया कि अंडर वैल्यूड है?
अंडर वैल्यूड जैसे कि कंपनी की सेल लगातार बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, उसके पीयर्स को वो वैल्यूएशन मिल रही है,
मतलब उसी इंडस्ट्री के
उसी
बाकी
की
कंपनीज।
कॉम्पिटिटर हैं उनको मिल रही है लेकिन इनको नहीं मिल रही, जबकि ये भी डेट फ्री है। तो देर सवेर मार्केट इसकी री रेटिंग तो करेगी, तो हो सकता है 4 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, 1 साल लग जाए, लेकिन वो बहुत अंडर वैल्यूड है, कभी तो उसके कंपैरिजन में वो आएगी ना। तो ऐसे ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, उसको मैंने पोजिशनल तौर पर रखा उन शेयर्स को।
तो कोई फंडामेंटल रेशियो होता है जिससे इसको फिगर आउट कर सकते हैं या सिंपल स्टेटमेंट से ही पता लग जाता है और शेयर प्राइस को कंपेयर करके बेंचमार्किंग?
नहीं, आप बहुत सारे हैं, जैसे अगर मान लीजिए जैसे डेट नहीं है कंपनी के ऊपर, कोई मोनोपली है, कंपनी का कोई मोनोपली में है, तो उसको तो वैल्यूएशन मिलेगी, जैसे IRCTC हो गया, उसमें हो गया एशियन पेंट भी एक तरह से, अब तो उसकी मोनोपली नहीं है लेकिन उसकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो उसमें अभी भी वो उसकी एक तरह से मोनोपली
फेयर फेयर,
ही।
एक रिकॉल है उसका
हाँ
मार्केट
उसका,
में।
हाँ तो ऐसे वो स्टॉक सिलेक्ट करने लग गया।
तो भारी भारी स्टॉक्स की बजाय आपने स्टॉक सिलेक्शन के तरीके में मिड कैप पे आ गए और फाइनेंशियली साउंड कंपनीज जो कि अपने कंपटीशन के मुकाबले अंडर वैल्यूड है एज ऑफ नाउ, मार्केट या इन्वेस्टर उनको उतना दाम नहीं दे रहा है जो उसको मिलना चाहिए। तो आप कहते हैं कि यार इसमें अभी घुस जाओ, 4-6 महीने अगर ज़्यादा रिटर्न नहीं आएगा आई कैन वेट।
तो उससे मुझे कई कई स्टॉक्स में 3x भी रिटर्न मिला है,
अच्छा, कितने होल्डिंग पीरियड में?
मिलेगी 6-8 महीने में।
6-8 महीने में आप लोग को 300%?
हाँ, 2-3 स्टॉक्स में मेरे को ऐसा ऐसा रिटर्न भी मिला है, जैसे BSC का शेयर था,
BSC? तो यस,
BSC का
पर ये तो अभी पिछले कुछ समय पहले, करीब 1 साल, 8-10 महीने, साल पहले की।
नहीं अभी नहीं, ये तो स्प्लिट हुआ था, उससे पहले भी ऐसे था,
अच्छा, तो उसकी बात होगी।
ये होगी 2018 या
अच्छा, उस समय भी
19 उसी।
आपको
हाँ उस
एसिड
टाइम भी
फॉर्म में?
500 से 3,000 गया था, उसके
वाह,
बाद दोबारा से स्प्लिट हुआ है, दोबारा से 500 आया, उसके बाद 3,000, अब 2700 कुछ चल रहा
हाँ नहीं अभी थोड़ा गिरा है एक्चुअली, 2100 2100 पे भी आ गया था बीच पे, वो सभी गिरे जब पिछले पांच पिछला पूरा हफ्ता
है।
ही
लेकिन
गिरा
वो
था।
ओवर स्ट्रेच भी बहुत हो गया था ना, तब भी मैं देखता था कि एक्सचेंज है और 10 के मल्टीपल पे मिल रहा है सिर्फ,
ये इसका मतलब बताओ, 10 का मल्टीपल
मतलब कि आप अर्निंग के प्राइस टू अर्निंग रेशियो
पी
बोलते हैं,
रेशियो ना,
पी
मैं
रेशियो
वही
बोलते
जानने
हैं,
की कोशिश कर रहा था।
पी रेशियो कि आप कंपनी की अर्निंग पे कितने टाइम्स आप पैसा दे रहे हो,
इसको कोई एग्जांपल, नॉर्मल दुकान के एग्जांपल से भी समझा दोगे तो भी चलेगा।
उसका है जैसे आपका 1 रुपया प्रॉफिट है, 1 रुपये प्रॉफिट के ऊपर आप शेयर कितने पे खरीद रहे हो, 1 रुपये अर्निंग के ऊपर आप 10 रुपये खर्च कर रहे हो, तो जितना वो कम होगा, आप 1 रुपये पे जितना कम देंगे उतना आपके लिए अच्छा है।
मान लो कि एक कंपनी रिलायंस है, उसका 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है और उसका शेयर प्राइस 2500 चल रहा है, तो अब मैं इसको कैसे देखूंगा?
अब आप उसको ऐसे देखोगे कि उसका जो पी रेशियो है, मतलब कि 1:2 कितने आपको ऊपर मिल रहा है, कि अगर पी रेशियो मान लो 10 का है तो आप 1 रुपये पे 10 रुपये दे रहे हो, अगर वही 5 हो जाए तो आप 1 रुपये की अर्निंग पे आप 5 रुपये दे रहे हो, तो जितना पी रेशियो कम होगा वो आपके लिए उतना अच्छा है।
ये एक फिक्स टूल, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी वेरी करता होगा
इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी वेरी वेरी
और
करता है।
कंपटीशन के साथ
जो
आप
मोनोपोली स्टॉक हैं वो तो 100 टाइम्स पे भी ट्रेड करते हैं, क्योंकि उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है।
कि मान लो कि कोई ऐसी कंपनी है जो कि जानबूझ के एक्सपेंसेस कर रही है, खर्चे कर रही है, ग्रोइंग स्टेज पे है, तो उसका रेवेन्यू चाहे बहुत अच्छा होगा लेकिन उसका एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से उसका अर्निंग बहुत कम है, तो उसका इम्पैक्ट पी ई रेशियो पर पड़ेगा तो लेकिन वो एक सेंस ग्रोइंग कंपनी है तो उसका पी ई रेशियो ज़्यादा होगा कंपेरेटिवली, क्योंकि उसका प्रॉफिट कम है ना, वहीं उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो पी ई रेशियो रिलेटिवली, मैं एग्जांपल के तौर पे चल रहा हूँ कि दोनों का प्राइस एज ऑफ नाउ सिमिलर है, दोनों के नंबर ऑफ शेयर्स भी मोर लेस सिमिलर हैं, लेकिन मैं सिर्फ प्रॉफिट को वेरिएबल लेके चल रहा हूँ अगर, तो उस केस में सिंस वो ग्रोइंग कंपनी है प्रॉफिट कागज़ पर कम दिखेगा लेकिन शायद उसने 3-4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए हैं, चाहे उसने 500 ट्रक खरीदे हैं,
उसका एक्सपेंशन में जा रहा है,
हाँ एक्सपेंशन में जा रहा है, वर्सेस एक दूसरी कंपनी है जो थोड़ी कंसोलिडेट चल रही है पिछले कुछ सालों से और वो लगातार प्रॉफिट बना रही है, लेकिन वो 10 साल बाद या 5 साल बाद या 2 साल बाद ग्रो ज़्यादा नहीं करेगी, वो उसी स्केल पर चलती रहेगी एज कम्पेयर टू दिस कंपनी जो कि शायद कुछ और ही बन जाएगी आगे चल।
हाँ,
तो उस केस में आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस के साथ, एक तो सिर्फ नंबर देखना, क्वालिटेटिव एनालिसिस अगर आपका होल्डिंग पीरियड 2-3 हफ्ते या 2-3 महीने नहीं है, 1-2 साल है, तो उस केस में कैसे आपको अवेयर रखना
पड़ेगा, आपको फ्यूचर ग्रोथ देखनी पड़ेगी, कितना एक्सपेंशन है, उसका फ्यूचर में अर्निंग कितनी हो सकती है, एक और प्लांट लगाया इससे कितनी कैपेसिटी होगी, इससे कितनी सेल ग्रोथ होगी, इससे कितना प्रॉफिट आएगा, तो उसको एडजस्ट करके कि इससे पैट पे कितना असर आ जाएगा, फिर वो फ्यूचर निकालनी पड़ेगी, फ्यूचर पी रेशियो तब क्या होगी, हम करंट से नहीं निकालेंगे उसमें, उसमें वैसे दिमाग लगाना पड़ेगा कि अभी तो वैल्यूएशन महंगी लग रही है लेकिन 2 साल बाद जब ये नए प्लांट चालू हो जाएंगे, नया प्रॉफिट आएगा उसमें ऐड होगा, तब वो उसकी पी रेशियो आज वाली नहीं होगी, तब हम उस हिसाब से सो,
और उसका एक्सपेंसेस भी तब तब उतने नहीं होंगे, एक्सपेंसेस तो हो गए ना,
वो एक फिक्स एसेट है, अगर आपने नया प्लांट लगाया वो तो आज की खर्चा है, एक बार हो गया वो, बार बार तो रेकरिंग तो है नहीं,
करेक्ट,
तो वो सोच के कर,
एक इन्वेस्टर को इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ट्रेडर का शायद,
ट्रेडर का तो आपने रोज का लेना, आज खरीदना हफ्ते बाद वो कंपनी के कुछ उस फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में कुछ चेंज तो हो नहीं जाएगा एक हफ्ते में।
एक स्विंग ट्रेडर को फंडामेंटल्स में कितना को पढ़ना चाहिए?
फंडामेंटल तो ज़रूरी है ही, अगर आप बेकार कंपनी में लगा रहे हो जिसका साउंड फाइनेंशियल है ही नहीं, कल को कुछ भी न्यूज़ आएगी और आपका सीधा स्टॉक 20% के सर्किट में लगा हुआ है लोअर सर्किट में, तो उन चीज़ों से तो बच के एक आपको अंदाज़ा तो होना ही चाहिए कि, लेकिन ये है रोज़ रोज़ वो देखने की ज़रूरत नहीं, एक अंदाज़ा होता है कि साउंड कंपनी है, अब उसके क्राइटेरिया अलग अलग हो सकते हैं, कोई प्रॉफिट देखता है, कोई देखता है कैश जनरेट हो रहा है नहीं, कोई देखता है डिविडेंड बांटती है, या कोई देखता है कि फ्यूचर ग्रोथ के लिए वो डिविडेंड नहीं बांटती, फ्यूचर ग्रोथ के लिए पैसा रख रही है,
yes.
तो वो फंडामेंटल सबके अलग अलग हो जाते हैं, कोई ये भी देखते हैं कि डेटर से कितने दिन में आता है पैसा, प्रॉफिट में तो है लेकिन पैसा पहुंचता ही नहीं है, डेटर से आने में 6-6 महीने लगते हैं।
इसको थोड़ा सा इजीली एक्सप्लेन कर दो, अगर डेटर्स मतलब जैसे तो पता हमें कि कर्जा लिया हुआ है या दिया हुआ है,
हाँ कर्जा का हो गया, या फिर जिसको माल बेचा है उससे भी पेमेंट वापस आने में टाइम लगता है, 6 महीने लग जाते हैं।
तो अगर अमाउंट रिसीवेबल जो लेना है मार्केट से पैसा फंसा हुआ है अगर, तो आप कह रहे हो ये अच्छी बात नहीं है।
हाँ, जितना कम साइकिल हो, जितना सेटलमेंट टाइम जितना कम हो उतना अच्छा है,
बट ये भी अगेन
इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है।